भागवत सार की श्रृंखला में 27वें अध्याय पर चर्चा जारी रहेगी। 21वें श्लोक को पढ़ेंगे और आगे चर्चा करेंगे। कृपया दोहराइए। श्री भगवान उवाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेन मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम्। श्रीभगवानुवाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेन मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम्। श्रीभगवानुवाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेन मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसंभृतया चिरम्। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा अनिमित्त निमित्तेन कर्म फल की इच्छा के बिना स्वधर्मेन अपने अपने निर्धारित कार्यों के करने से अमल आत्मना शुद्ध मन से तीव्रया उत्कट अर्थात गंभीर मई मुझको भक्त्या भक्ति से च तथा श्रुत श्रवण संभृतया से युक्त चिरम दीर्घ काल तक। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। भगवान ने कहा, यदि कोई गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है और दीर्घ काल तक मेरे विषय में या मुझसे सुनता है तो वह मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार अपने अपने नियत कार्यों के करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और मनुष्य पदार्थ के कलमश से मुक्त हो जाएगा। तात्पर्य, इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी की टीका है कि केवल प्रकृति के सहचर्य से ही कोई बद्ध नहीं हो जाता। बद्ध जीवन तो प्रकृति के गुणों से दूषित होने के बाद ही प्रारंभ होता है। यदि कोई पुलिस विभाग के संसर्ग में रहता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह अपराधी है। जब तक कोई अपराध नहीं करता तब तक पुलिस विभाग के होते हुए भी उसे दंडित नहीं किया जाता। इसी प्रकार मुक्त जीव भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। यहाँ तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी जब अवतरित होते हैं तो प्रकृति के सहचर्य में रहते हैं किंतु उससे प्रभावित नहीं होते। मनुष्य को इस तरह कर्म करना होता है कि इस भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी वह कलमश से प्रभावित ना हो। यद्यपि कमल के फूल का सहचर्य जल के साथ होता है किंतु जल उससे छू नहीं जाता। यही वह विधि है जिस तरह मनुष्य को रहना है, जैसा कि भगवान कपिल देव ने यहाँ पर वर्णन किया है, अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेन मलात्मना। यदि मनुष्य गंभीरता पूर्वक भक्ति में लगा रहे तो वह समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों से मुक्त हो सकता है। जिस तरह यह भक्ति विकसित होकर परिपक्व बनती है उसकी यहाँ व्याख्या की गई है। प्रारंभ में मनुष्य को शुद्ध मन से नियत कर्तव्य करने होते हैं। शुद्ध चेतना का अर्थ है कृष्ण चेतना। मनुष्य को कृष्ण चेतना में नियत कर्तव्य करने होते हैं। उसे अपने नियत कर्तव्यों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, उसे केवल कृष्ण चेतना में कर्म करना होता है। कृष्ण भावना भावित कर्तव्य करते हुए उसे यह तय करना चाहिए कि उसके वृत्ति परक कर्तव्यों से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। भागवत में एक अन्य स्थान में कहा गया है, स्वनुष्टिस्तस्य धर्मस्य समसिद्धिम हरितोषणम्। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कर्तव्य करने होते हैं, किंतु ऐसे कर्तव्यों की पूर्णता तभी होगी जब भगवान श्री हरि ऐसे कर्मों से तुष्ट हों। उदाहरणार्थ अर्जुन का नियत कर्तव्य युद्ध करना था और उसके युद्ध की पूर्णता श्री कृष्ण की तुष्टि से आंकी जानी थी। कृष्ण की इच्छा थी कि वह युद्ध करे और जब उसने भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध किया तो यह उसके भक्तिमय कर्तव्य की पूर्णता थी। दूसरी ओर जब भगवान की इच्छा के विरुद्ध वह युद्ध नहीं करना चाह रहा था तो वह अपूर्ण था। यदि कोई अपने जीवन को पूर्ण बनाना चाहता है तो उसे कृष्ण की तुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्य संपन्न करने चाहिए। उसे कृष्ण चेतना में कार्य करना चाहिए क्योंकि ऐसे कर्म से कोई फल नहीं उत्पन्न होता। अनिमित्त निमित्तेना, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञ अथवा विष्णु की तुष्टि के लिए ही सारे कार्य संपन्न किए जाने चाहिए। अन्य कोई भी कार्य या यज्ञ जो विष्णु की तुष्टि के बिना संपन्न किया जाता है बंधन उत्पन्न करता है। अतः यहाँ पर कपिल मुनि द्वारा इसकी भी संस्तुति की गई है कि कृष्ण चेतना में कार्य करके अर्थात भक्ति में गंभीरता पूर्वक लग करके भव बंधन को छिन्न किया जा सकता है। ऐसी भक्ति दीर्घ काल तक श्रवण करने से विकसित होती है। कीर्तन तथा श्रवण तो भक्ति योग का शुभारंभ है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करे और उनसे भगवान के दिव्य प्राकट्य कार्यकलापों उनके अंतर्धान आदेश आदि के विषय में सुने। श्रुति अथवा शास्य दो तरह के होते हैं, एक जो भगवान द्वारा कहे गए हैं और दूसरे जो भगवान तथा उनके भक्तों के विषय में कहे गए हैं। भगवद गीता पहले प्रकार की है और श्रीमद् भागवत दूसरे प्रकार की। मनुष्य को चाहिए कि गंभीर भक्ति सेवा में स्थिर होने के लिए ऐसी श्रुतियों को बारंबार श्रवण विश्वसनीय स्रोत्रों से करे। ऐसी भक्ति में लगने से वह माया के कलमश से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से हृदय प्रकृति के तीन गुणों के प्रभावों से उत्पन्न समस्त कलमश से स्वच्छ हो जाता है। निरंतर तथा नियमित श्रवण करने से काम तथा लोभ या प्रकृति पर अधिकार जताने के कलमश के प्रभाव कम हो जाते हैं और जब लोभ तथा काम घट जाते हैं तो मनुष्य सतोगुण पद को प्राप्त होता है। यह ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। इस प्रकार मनुष्य दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। दिव्य पद पर स्थिर बने रहना ही भवबंधन से मुक्ति है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिचन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे तो कृपया ये पेपर्स पहले से बांटने चाहिए।
सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयोऽस्फुरा।
हरे कल इस अध्याय पर चर्चा करते हुए गुणों की चर्चा हो रही थी कि कैसे भगवान कपिल ये बतलाते हैं कि भक्त को कैसे गुण उत्पन्न करने चाहिए। ये कहते हुए भगवान कपिल ये नहीं कहते कि ये गुण हो सकते हैं, अगर इच्छा हो तो भक्त उत्पन्न करे। वो कहते हैं कि व्यक्ति को गुण उत्पन्न करने चाहिए, अर्थात ये अनिवार्य है। ये कोई चुनाव का विषय नहीं है कि हम चुने या ना चुने, ये अनिवार्य है। जैसे कृष्ण भक्ति ये जीव के लिए अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि जीव चुन सकता है कि हाँ अगर इच्छा हो तो फिर भक्ति करे, नहीं इच्छा हो तो ठीक है रहे, कोई तकलीफ नहीं। नहीं, कृष्ण भावनामृत ये अनिवार्यता है, अनिवार्य चीज है। हाँ बाकी अन्य चीजें ये ऑप्शन है हमारे लिए, ये हम चुनाव कर सकते हैं हम करें या ना करें, लेकिन कृष्ण भावनामृत ये अनिवार्य है। और कृष्ण भावनामृत में आकर भगवान कपिल यहां कह रहे हैं कि व्यक्ति को अगर पूर्णता प्राप्त करनी है, मुक्त होना है, भगवान के धाम जाना है, तो इन गुणों को उत्पन्न करना होगा। तो कल हम लोगों ने कुछ गुणों की चर्चा की, जैसे किस तरह से व्यक्ति को सभी के लिए समान होना चाहिए, कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, उसको किसी के साथ बहुत निकट का संबंध केवल भक्तों के साथ रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मुनि होना चाहिए, मौन रहना चाहिए, ये सारे गुण हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब आगे के गुणों को वो वर्णन करते हैं कि उन्होंने वर्णन किया कि व्यक्ति को एक एकांत में रहना चाहिए। कल हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि कैसे एकांत, और एकांत का अर्थ क्या है प्रभुपाद समझाते हैं। एकांत मतलब ये नहीं कि हम घर बार सारा समाज छोड़कर हिमालय में चले जाएं, नहीं, एकांत का अर्थ है केवल भक्तों के साथ में रहना चाहिए, ऐसे लोगों से अलग रहना चाहिए जो हमें भौतिकता में आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद अगला गुण वो वर्णन करते हैं कि उसे शांत होना चाहिए। शांत रहना अर्थात बहुत संतुष्ट। जैसे व्यक्ति, एक गुण उन्होंने वर्णन किया थोड़े समय पहले कि जो भी कमाए उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए, तो जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो शांत रहता है, मन शांत रहना चाहिए। और शांत रहने का तरीका क्या है, भगवद गीता में भगवान बताते हैं, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांते अशांतस्य कुतः सुखम। तो शांत रहना है तो हमें ये जानना होगा कि हमारी बुद्धि को भगवान में लगाएं। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगी है, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत है उसको सुख कहां मिल सकता है, भगवान कहते हैं। तो सुख का मार्ग है शांत होना, शांत होने का मार्ग है अपने मन को वश में करना, और मन को वश में करने का मार्ग है कि मन में अपनी हमारी जो बुद्धि है आध्यात्मिक बुद्धि उसको जागृत करना। और आध्यात्मिक बुद्धि जागृत होती है जब हम अपना मन परमात्मा में लगाते हैं, भगवान में लगाते हैं, तो उसको शांत कहा जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति को शांत होना चाहिए। वैसे शांति का सूत्र भगवान भगवद गीता में और एक स्थान पर देते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम माम शांति मृच्छति। व्यक्ति को शांति कब प्राप्त होती है, भगवान कहते हैं शांत कब होता है, जब ये जान लेता है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि सारी चीजों के भोक्ता भगवान हैं, महेश्वरम महा ईश्वर हैं वो, सर्वलोक सारे लोकों के भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ हैं जितनी भी तपस्याएं हैं उनके उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, वो हमारे सुहृद हैं, सुहृद अर्थात बहुत निकट के। जैसे अंग्रेजी भाषा में एक ही शब्द कह दिया जाता है फ्रेंड, लेकिन संस्कृत में उसी चीज को कई अलग अलग शब्दों में कहा जाता है जिससे अलग अलग भाव प्रकट होते हैं, जैसे मित्र, सखा, सुहृद, ये अलग अलग शब्द हैं।
और इनके अलग अलग अर्थ हैं। सुहृद अर्थात बहुत निकट का मित्र, जो हमारे हृदय की बात को जानता है। सुहृद, जिसका हृदय हमसे मिला हुआ है, उसको सुहृद कहते हैं, बहुत निकट का मित्र। जैसे मित्रता जब होती है तो कुछ मित्रता होती है व्यवसायिक कार्यों के लिए, जैसे लोग मिलते हैं, बिजनेसमैन व्यापारी आपस में मिलते हैं, उनमें भी मित्रता है, लेकिन वो केवल व्यापार के लिए है। दूसरी मित्रता होती है जहां वो सखा कहलाता है, सखा मतलब और निकट आ जाता है, लेकिन सुहृद बहुत निकट, हृदय के निकट है। तो भगवान कहते हैं सुहृद सर्वभूतानाम, सभी जीवों के लिए मैं सुहृद हूं, ज्ञातवा ये जानकर माम शांति मृच्छति, जो मुझे जान लेता है, इन चीजों को जान लेता है, उसको शांति प्राप्त होती। तो अगला गुण भक्त का है कि उसे शांत रहना चाहिए और मैत्र। अभी हम लोग पिछले अध्यायों में भी पढ़ रहे थे तितिक्षवा कारुणी कहा सुहृद सर्वदेही नाम। तो एक जीव को, एक भक्त को मैत्र, हरेक से मित्रता होनी चाहिए। उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हरेक से मित्रता का भाव रखना चाहिए। मित्रता क्या होती है, कैसे मित्रता की जा सकती है? मित्रता का भाव ये है कि हम जो अपने बराबर के लोग हैं उनसे मित्रता करके उनको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाएं। एक मध्यम अधिकारी के लक्षण दिए गए हैं। मध्यम अधिकारी के लक्षण हैं कि वो जो अपने से बड़े हैं, जो कृष्ण हैं उनको प्रेम करते हैं भगवान से, जो अपने से वरिष्ठ हैं उनको आदर देते हैं, जो अपने समान हैं उनसे मित्रता करते हैं, जो अपने से कनिष्ठ हैं उन पर दया करते हैं। ये मध्यम अधिकारी भक्त के लक्षण हैं। और हाँ, जो भगवान से विरोध करते हैं, भक्तों का विरोध करते हैं, उनको दूर रखते हैं। तो ये भक्त के लक्षण है। तो इसीलिए मित्रता होनी चाहिए। अगर भक्तों में आपस में मित्रता हो, मित्र का अर्थ क्या होता है, मैत्र मतलब वो व्यक्ति जो एक दो मित्रों का अर्थ है, जो एक दूसरे के लिए अच्छा चाहे, उसको मित्र कहते हैं। अगर एक दूसरे का बुरा चाहते हैं वो तो शत्रु है। तो अगर कोई मित्र है और ये चाहता है कि आप भौतिकवादी ज्यादा बने, जैसे कर्ण और दुर्योधन, कर्ण मित्र था, लोग गुणगान करते हैं कि देखिए कर्ण की मित्रता, उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, भगवान ने उसको कहा कि हमारी तरफ आ जाओ, वो गया नहीं, कितना महान है, कितनी बड़ी मित्रता है। ये मित्रता नहीं, शत्रुता है। जानते हुए कर्ण जानता था युद्ध के पहले कि हम सब मारे जाएंगे, हमारी हार होगी, ये जाकर उसने भीष्म देव को बताया। जिस समय भीष्म बाणों की शैया पर गिरे, दसवें दिन सुबह के समय सब लोग, दोपहर के समय जब वो गिरे तो सब लोग उनसे मिल लिए चले गए, रात्रि के समय कर्ण गया उनसे मिलने। भीष्म देव ने उनसे कहा कर्ण अभी भी रुक जाओ, अभी भी रोक दो, देखो और कितना नाश देखना चाहते हो, तुम जीत नहीं पाओगे। कर्ण ने कहा मैं जानता हूं, मैं स्वप्न देख चुका हूं भीष्मदेव, और मैंने देखा है कि केवल पांडवों के अलावा कोई जीवित नहीं रहेगा, मैं देख चुका हूं, अपने आप की भी मृत्यु देख चुका हूं, दुर्योधन को भी मरते देख चुका हूं, और यह निश्चित है कि वो मरेगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी मित्रता नहीं त्याग। ये कैसी मित्रता है? तो असली मित्रता है जहां हम दूसरे के लिए भला चाहें। तो दो मित्र का अर्थ है जो एक दूसरे का भला चाहें, गलत नहीं चाहें। अगर कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, जैसे विदुर और धृतराष्ट्र की मित्रता, वो सच्ची मित्रता है, वो सच्चा प्रेम है। जब विदुर ने देखा कि धृतराष्ट्र अब भी जीवन भर विदुर बोलते आए, कभी विदुर ने धृतराष्ट्र का साथ नहीं दिया कि धृतराष्ट्र आप जो कर रहे हैं सही है, मैं आपका मित्र हूं, और छोड़ा भी नहीं, वो रहे, लेकिन उन्होंने समझाया, बारंबार समझाया, इस विनाशकारी युद्ध के कारण आप हैं, दुर्योधन के इस हट के कारण आप हैं, दुर्योधन की इस मूर्खता, इस अधर्म के कारण आप हैं। बारंबार विदुर ने समझाया, मान लीजिए श्री कृष्ण भगवान हैं, विरोध नहीं कीजिए, भक्ति कीजिए। धृतराष्ट्र माने नहीं। और अंत में भी जब विदुर ने देखा, जब विदुर ने सुना, दरअसल विदुर तीर्थ यात्रा में थे, उन्हें पता चला श्री कृष्ण चले गए, बहुत बड़ा विनाश हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। तो विदुर की कोई इच्छा नहीं थी वापस आने की। किस लिए वापस आते? सारे तो मारे जा चुके थे, भीष्म देव चले गए थे, द्रोणाचार्य चले गए थे, सब चले गए थे, कोई था नहीं। और युधिष्ठिर राज्य कर रहे थे, विदुर जानते थे युधिष्ठिर अगर राज्य कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि वो धर्म पर चलते हैं, तो फिर किस लिए आना? लेकिन फिर भी वापस आए, सच्ची मित्रता, धृतराष्ट्र से प्रेम, एक ही उद्देश्य के लिए वापस आए। जब वो वापस आए तो बहुत स्वागत किया युधिष्ठिर ने उनका, लेकिन विदुर कोई चिंता नहीं, कोई प्रभावित नहीं हुए, वो सीधे गए अपने मित्र, अपने भाई धृतराष्ट्र के पास। और उस समय उन्होंने सच्ची मित्रता दिखलाई। उन्होंने उस समय नहीं कहा कि ठीक है धृतराष्ट्र, अब तो जो हो गया हो गया, आपके पुत्र मारे गए, बहुत दुख की बात है, कोई बात नहीं, अब आप यहां आराम से रहिए, मैं भी आपके साथ रहता हूं, हम दोनों रहेंगे। नहीं, भीम के द्वारा फेंके गए टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो तुम। एक राजा जो सिंहासन पर बैठा है, उसके दास दासियां ताली बजा दे खाली, तो जो चाहिए वो आ जाए, एक शब्द बोल दे जो चाहिए वो मिल जाए। युधिष्ठिर उनको राजा की तरह रख रहे थे, युधिष्ठिर ने जेल में नहीं डाल दिया था उनको, तो सब कुछ उनके लिए अवेलेबल है। और उसको जाकर, ऐसे व्यक्ति को जाकर वो कहते तुम कुत्ते हो, वो भी किसके? भीम के द्वारा, क्योंकि भीम से बड़ा क्रोध था धृतराष्ट्र को। बाकी सब तो ठीक है, क्योंकि भीम ने उसके 100 पुत्रों को मारा था, इसलिए भीम से बड़े दुखी, तो उसीलिए भीम का नाम लेते हैं। अरे वो भीम जिसने तुम्हारे 100 पुत्रों को मार दिया, उसके टुकड़ों पर पल रहे हो तुम, क्या लाभ है ऐसे जीवन का? और तब धृतराष्ट्र ने माना कि हाँ सही। उसी रात उसने घर छोड़ दिया, वे इंतजार नहीं किया कि सुबह उठकर युधिष्ठिर से कहता हूं कि ठीक है मैं जा रहा हूं, थोड़ी व्यवस्था करो, थोड़ा धन वन भेज देना, जंगल में कैसे रहूंगा, थोड़ा कुछ व्यवस्था करो, या प्रेम से सबसे गले मिलके जाऊं कि चलो अब जा रहा हूं, पता नहीं कब देखूंगा आपको। नहीं, रात्रि में बिना किसी को बताए चले गए वहां से, छोड़ दिया उन्होंने। तो ये सच्ची मित्रता थी। तो इसलिए जो कर्ण ने किया वो तो विनाश का कारण बना, वो मित्रता नहीं। इसलिए भक्तों में कैसी मित्रता होनी चाहिए? भक्तों में विदुर और धृतराष्ट्र के जैसी मित्रता होनी चाहिए। अर्थात इसका ये नहीं कि हम एक दूसरे को विदुर की तरह डांटते रहें, हाँ लेकिन आवश्यकता पड़े तो डांटना चाहिए, जैसे विदुर ने किया। किस लिए कर रहे थे? उसको कोई लाभ नहीं था, विदुर तो मुक्त हो चुके थे उस समय भी, क्योंकि मैत्रेय मुनि से मिल चुके थे, वो तो ज्ञान पूरा सुन चुके थे भगवान के विषय में। ये जो हम सब सुन रहे हैं मैत्रेय मुनि का, ये तो विदुर ही सुन रहे हैं, तो विदुर तो मुक्त हो चुके थे, कोई आवश्यकता नहीं थी उन्हें फिर से जाने की। लेकिन प्रेम था, मित्रता थी, इसलिए जाकर डांटा, तो उनका कोई लाभ नहीं था, धृतराष्ट्र के लाभ के लिए डांटा। ऐसी मित्रता भक्तों में होनी चाहिए, हम सबको आपस में ऐसी मित्रता होनी चाहिए कि हाँ अगर उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हमें उनसे प्रेम करना है, उनको सहयोग करना है, तो सहयोग करें, और अगर भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हमें उन्हें कुछ डांटना है तो डांटें, लेकिन उद्देश्य ये हो कि भक्ति में आगे बढ़े, अपना जीवन खराब नहीं करें, ये सच्ची मित्रता। तो ऐसी मित्र, ऐसा गुण भक्तों में होना चाहिए कि वे लोग जान सकें कि कैसे भगवान की भक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, और उसके आधार पर हमारी मित्रता हो। हमारी मित्रता इंद्रिय तृप्ति, भौतिक सुविधाओं के आधार पर नहीं होनी चाहिए। मैं उसका मित्र हूं क्योंकि वो मुझे भौतिक सुविधा प्रदान करता है, मैं किचन इंचार्ज से मित्रता कर लेता हूं ताकि गुलाब जामुन एक्स्ट्रा खाने के लिए मिल जाए, ये मित्रता नहीं है। भौतिक सुविधाओं के लिए, भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए की गई मित्रता शत्रुता है, क्योंकि वो भगवान से दूर ले जाती है। जो चीज भगवान से दूर ले जाए वो कैसी मित्रता हो सकती है, वो तो शत्रु है व्यक्ति। दरअसल कर्ण दुर्योधन का शत्रु था, क्यों? वो अगर उसे वो समझाता, कर्ण कहता कि देखो मैं युद्ध नहीं करूंगा, कर्ण ने हर जगह पर साथ दिया दुर्योधन का। दुर्योधन ने कहा मुझे द्रौपदी को निर्वस्त्र करना, कर्ण ने कहा बहुत अच्छा, विरोध नहीं किया खड़ा होके कर्ण ने कि नहीं ये गलत है, तुम ऐसा नहीं करना। दुर्योधन ने कहा कि वो लोग वन में है, मुझे जाकर उनको बड़ा ऐश्वर्य दिखाना है, उनको उनको तकलीफ देनी है। कर्ण ने कहा यस हम लोग सब जाएंगे। ये मित्रता नहीं, मित्रता वो है जहां कर्ण सिखलाता कि देखो गलत कर रहे हो तुम। उनका अधिकार है, दे दो आधा राज्य उनको, दो आधा राज्य हम लोग करेंगे, क्या तकलीफ है। ये सिखलाता उसको, ये सच्ची मित्रता होती। ऐसी मित्रता भक्तों में चाहिए, ऐसा ऐसा हृदय में दूसरों के लिए प्रेम चाहिए, दूसरों के लिए ध्यान चाहिए, चिंता चाहिए। हमें एक भक्त के लिए चिंता होनी चाहिए कि कैसे ये भक्त भक्ति में आगे बढ़ेगा, मैं क्या इसके लिए करूं ये भक्ति में आगे बढ़े। ये सच्ची मित्रता। तो हम सबके हृदय में ऐसा भाव होना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम अपने कष्ट लेने के लिए तैयार हों। ये सच्ची मित्रता, ऐसा मैत्र भाव होना चाहिए कि हम एक दूसरे को सुविधाएं प्रदान करने के लिए तकलीफ ना लें, लेकिन एक दूसरे को आगे भक्ति में बढ़ाने के लिए हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति आदर होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति चिंता होनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उसका बड़ा ध्यान रखने का भाव जेन्युइन हृदय से आना चाहिए। बाहरी दिखावा नहीं कि बाहरी दिखावा तो हम कर रहे, अरे अरे प्रभु जी आपने प्रसाद लिया कि नहीं, ये लिया कि नहीं, और अंदर से अरे क्यों आता है ये रोज तंग करने के लिए। हृदय से होना चाहिए, हमें भक्त को देखकर लगना चाहिए कि मैं क्या करूं इसके लिए जिससे भक्ति में आगे बढ़े, कैसी मैं सुविधा प्रदान करूं। एक एक सरल चीज, बड़े प्रेम से बात करना। कल हमें एक भक्त बता रहे थे कि जब उन्होंने मंदिर आना शुरू किया तो एक भक्त उनसे बड़े प्रेम से आकर बस इतना बोलता था हर बार, प्लीज आप लेक्चर में आइए, बस इतना बोलते। उसके लिए मैं आया करता था, मुझे तो कोई रुचि नहीं थी लेक्चर, ये क्या मुझे क्या पता था कृष्ण भावनामृत क्या है, लेकिन बस केवल वो बड़े प्रेम से कह देता था कि आपको आना चाहिए, आप आइए प्रवचन में। बस वो प्रवचन में आने लगे, अभी बहुत अच्छे भक्त हैं, नियम का पालन कर रहे हैं। तो ये चाहिए हमें, भक्तों में आपस में ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसी मित्रता होनी चाहिए कि हरेक भक्त को उस भक्त से मिलने की उत्कंठा हो। ऐसा नहीं हो कि उस भक्त को देखते ही लगे कि कहां सुबह सुबह किसके शक्ल देख ली मैंने। हमें उत्कंठा होनी चाहिए कि कैसे, कब वो भक्त मिले, कब मैं उससे बातचीत करूं, ऐसी मित्रता का भाव होना चाहिए और हरेक को। तो जब ऐसा भाव होगा तो कितना प्रेम का वातावरण होगा, फिर हम सब कभी कृष्ण भक्ति को त्यागने की बात नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने जब ये आंदोलन बनाया, उनके भक्त समझाते हैं कि वो तो जानते नहीं थे कृष्ण क्या है, वो तो केवल प्रभुपाद को जानते थे। प्रभुपाद ने इतना प्रेम दिया उन लोगों को, इतनी मैत्री दी, तो प्रभुपाद के कारण वे लोग बने रहे और आज भगवान की भक्ति में बड़े ऊंचे स्तर पर। तो इसलिए ऐसी मित्रता का भाव हमें चाहिए हर एक भक्त के लिए। तो हृदय में आदर हो दूसरे के विचारों के लिए, हृदय में चिंता हो उनके लिए, ध्यान रखें उनका। हर एक भक्त अगर एक दूसरे का ध्यान रखना शुरू कर दे, हमें ये नहीं सोचना चाहिए क्यों मंदिर आता। जैसे हमें एक बार एक भक्त बता रहे थे, वो बड़े अच्छे भक्त हैं, मंदिर में बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, बेलगाम में हैं, तो बता रहे थे कि हम तो शुरुआत में आया करते थे स्वीट राइस खाने के लिए, क्योंकि संडे को स्वीट राइस बनता था। और भक्त कहते कि हम स्ट्रेट उस समय आते थे जब प्रवचन समाप्त होने वाला होता था, प्रवचन में कोई रुचि नहीं थी, तो हम आते थे, प्रवचन समाप्त होने वाला, कीर्तन शुरू हुआ, बस तब आते थे, थोड़ा बहुत हाथ बात ऊपर हिलाया, फिर नीचे जाके हमें स्वीट राइस खाना, बस उसके लिए आते थे। आज बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं मंदिर में, बड़े वरिष्ठ भक्त हैं। तो देखिए, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो केवल खाने के लिए आ गया। यस, किसने कहा है? ये तो केवल खाने के लिए आते हैं, मगर भगवान का प्रसाद है। तो ये भाव हमारा होना चाहिए, जब हम प्रसाद सर्विंग करें तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए? प्रसाद बांटते समय हमारा भाव होना चाहिए कृतज्ञता का, जिसको प्रसाद दे रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञता, हृदय में हाथ जोड़ने चाहिए और कहना चाहिए कि धन्यवाद, क्योंकि ये व्यक्ति मुझे सेवा में लगा रहा, भगवान की सेवा में। ऐसा दूसरा अन्य कोई भाव नहीं होना चाहिए। तो हम जिसको प्रसाद दे रहे हैं उसके प्रति ये भाव नहीं होना चाहिए कि बड़ी कृपा कर रहा हूं मैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः, मैंने इसके ऊपर बड़ी कृपा की, देखो मैंने खिला दिया। नहीं, इसने कृपा की है, ये मुझसे ले रहा है और मुझे सेवा में लगा रहा है भगवान की, ये भाव होना चाहिए। इसको सही मित्र कहते हैं, मित्रता कहते हैं। अगर सोचिए ऐसा भाव हर एक भक्त का हो, हर एक के हृदय में ये भाव हो, तो फिर हमें वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है। यही प्रभुपाद ने यही कहा, मेरे सारे मंदिर वैकुंठ हैं, लेकिन हमारा भाव ही, हम देख नहीं पाते हैं वैकुंठ को। तो इसीलिए भक्तों में ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैत्र। और अगला गुण है करुणा। करुणा होनी चाहिए भक्त के हृदय में। करुणा अर्थात किस लिए? कोई व्यक्ति आकर आपसे पैसे मांगे, मुझे शराब पीने के लिए पैसा नहीं है, दे दो, आपके हृदय में करुणा आ जाए और आप पैसा दे देते हैं कि हाँ बेचारा गला सूख जाएगा इसका, 3 दिन से शराब नहीं पी है, थोड़ा पैसा दे देता हूं, कितनी करुणा है आपके हृदय में, है ना? ये करुणा नहीं है, ऐसी करुणा नहीं चाहिए, ये तो धोखा है, करुणा नहीं है ये, क्योंकि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आप करुणा के नाम पर बुरे कर्म ले रहे हैं, तो ये धोखा है, ये करुणा नहीं है। तो सच्ची करुणा क्या है? श्रील प्रभुपाद ने दिखलाई। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो देखा उन्होंने कैसे पड़े हुए हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने अपनी करुणा दिखलाई, उन्होंने ज्ञान दिया, उनको बाहर निकाला। ऐसे लोग जो उनका विरोध कर रहे थे, प्रभुपाद ने उनसे कोई शत्रुता नहीं की। एक व्यक्ति ने रात को 12 बजे उठाकर बाहर फेंक दिया उनको, जिस कमरे में रहते थे, चले जाओ यहां से। वो खड़े हैं रात को 12 बजे, अनजान देश, अनजान शहर, किसी को जानते नहीं, कृष्ण पर विश्वास बस। प्रभुपाद ने उनके विरुद्ध भी कुछ नहीं किया। उस समय भी प्रभुपाद के हृदय में करुणा थी। प्रभुपाद ये सोचते थे कि कितने कष्ट में है ये जीव, अज्ञान में है, कैसे मैं इसको ज्ञान में ला सकता, ये करुणा। तो सच्ची करुणा ये है कि हम व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करें, भक्ति का ज्ञान प्रदान करें। सच्ची करुणा ये है कि हम उसको जहां भी जिस भी अवस्था में विरोध ही क्यों ना कर रहा हो, हमारा मित्र ना हो, लेकिन फिर भी उसको भगवान के निकट लाने का प्रयास करें, ये करुणा है। तो सच्ची करुणा कृष्ण भावनामृत का प्रचार है। प्रचार ये करुणा का मूर्तिमान स्वरूप है। जिसके हृदय में करुणा नहीं है वो प्रचार नहीं कर सकता, ये निश्चित है। प्रचार का अर्थ ही है करुणा, जैसे प्रभुपाद ने किया। क्यों सारे जगत में प्रचार कर सके? करुणा थी। और ये करुणा भगवान के सारे ऐश्वर्यों का आधार है। भगवान के कई ऐश्वर्य हैं, लेकिन भगवान के ऐश्वर्यों का लाभ क्या होगा अगर उनके हृदय में करुणा नहीं है? हम कहते हैं भगवान के पास धन है, भगवान के पास यश है, बल है, ज्ञान है, वैराग्य है और कई ऐश्वर्य हैं, क्या लाभ है? उनका आधार है करुणा, क्योंकि करुणा के चलते भगवान उसे हमें प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान। भगवद गीता ये भगवान की करुणा है। कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को अपना धाम छोड़कर यहां पर हमारे जैसे पापी अधर्मी लोगों के बीच आकर उनको ज्ञान देने की। करुणा है ये उनकी। और एक चीज जान लीजिए, भगवान वही दे सकते हैं जो उनके पास है, और भगवान के पास केवल करुणा है। वो बने ही करुणा से, वो कुछ दे ही नहीं सकते। वो दंड भी देते हैं तो करुणा है उनकी, किसी को मारते हैं, असुरों का वध करते हैं, वो करुणा है उनकी, क्योंकि मुक्त कर रहे हैं। वो ज्ञान दे रहे हैं वो करुणा है, वो प्रेम दे रहे हैं वो करुणा है, वो संबंध स्थापित कर रहे हैं वो करुणा है, और वही करुणा भक्तों में होती है। प्रभुपाद ने जो किया वो करुणा थी उनकी। बड़े बड़े मंदिर स्थापित किए किस लिए? अपने लिए नहीं। प्रभुपाद कहते कि हम तो एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर सकते हैं भगवान का, हमें क्या चिंता है। लेकिन भगवान के बड़े बड़े मंदिर प्रभुपाद ने बनवाए ताकि लोग आकर्षित हों। आप देखिए, जहां बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, विशाल होते हैं, लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं, हजारों लोग जाने लगते हैं। अब छोटा सा कहीं केंद्र बनाइए, मंदिर बनाइए, बैठकर जप कीजिए, लोग आने के लिए प्रयास नहीं करते। तो प्रभुपाद ने बनाए ताकि लोग आकर्षित, करुणा थी प्रभुपाद की लोगों के ऊपर, ताकि लोग आ सके। और आज देखिए, जैसे जुहू में भगवान का मंदिर प्रभुपाद ने बनाया, आज हजारों लोग, जन्माष्टमी के अवसर पर लाखों लोग आते हैं वहां पर, और हर रोज हजारों लोग आते हैं। कितना लाभ उनको मिल रहा है। जो लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हरि नाम सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो कितनी करुणा है उनकी। तो जो करुणा भगवान में होती है, वही करुणा भक्त के हृदय में होती है, और तभी वो प्रचार कर सकता है। एक प्रचारक के हृदय में करुणा का होना आवश्यक है। क्यों? तभी वो जाएगा, तभी वो कष्ट लेगा। हालांकि उसको कष्ट हो रहा है, लेकिन वो दूसरों को ज्ञान बांटने के लिए, दूसरों को कृष्ण के पास लाने के लिए तैयार रहेगा। अगर हृदय में करुणा नहीं है तो केवल अपनी मुक्ति का विषय सोचेगा। भक्तों में कई श्रेणियां होती हैं। अगर कोई भक्त केवल अपने लिए सोच रहा है, मैं और मेरा भगवान, ये कनिष्ठ स्तर है। लेकिन जिसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है, भगवान की कृपा हो गई, तब करुणा उत्पन्न होगी। उस करुणा से वो हरेक के लिए कष्ट लेने तैयार है। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका जा रहे हैं, किस लिए, क्या आवश्यकता थी? कहां रह रहे थे? वृंदावन में। ये वो उम्र होती है जब इस उम्र में लोग वृंदावन छोड़ना नहीं चाहते, कहीं मर गए तो क्या होगा। और प्रभुपाद वृंदावन छोड़िए, भारत को छोड़कर चले गए। और जाते समय भी क्या था, ऐसा नहीं था कि बहुत सुविधा थी। एक ऐसा जहाज जिसमें माल जाता है उसमें जा रहे हैं, और वो भी किस लिए? उसके पहले उसकी जो सुमति मुरार जी, जो उसकी मालकिन थी, उनसे प्रार्थना कर करके उन्होंने टिकट लिया। देखिए करुणा हृदय में, कोई आवश्यकता नहीं थी। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में 2 कमरे उनको मिले हुए थे, बड़े आराम से रह रहे थे वहां पर, अपना भजन करते, देह त्याग करते, भगवान के धाम जाते। क्या जरूरत थी उनको सुमति मुरार जी के पास जाकर, उनके दरवाजे पर खड़े होकर, सीढ़ियों पर बैठकर बार बार प्रार्थना करना? नहीं, एक टिकट दे दो, एक टिकट बस दे दो, मुझे अमेरिका भेज दो। कोई आवश्यकता नहीं थी प्रभुपाद को, करुणा थी। उन्होंने केवल अपने बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या, मैं तो वृंदावन में रहकर भजन करके अपना देह त्यागूंगा। होता है लोगों का, जो हो, जिसको भक्ति करनी है करे, नहीं करनी ना करे। करुणा थी, इसलिए इतनी प्रार्थना की उससे उन्होंने। ये अगर कोई व्यक्ति उनकी करुणा को समझना चाहता है तो इन चीजों को देखना चाहिए। कौन एक सन्यासी होगा जो एक स्त्री के दरवाजे पर बैठकर, सीढ़ियों पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे एक बार मिलने दो, बस मैं मिलना चाहता, मुझे टिकट चाहिए जाना। ये करुणा है। और वहां जाकर भी क्या हुआ, 1 साल तक कोई लाभ नहीं, रहने की जगह नहीं, कहीं पर पहले थी उन्होंने निकाल दिया, फिर दूसरी जगह शराबियों के पास। प्रभुपाद जब चढ़ते थे अपनी सीढ़ियां तो लोग गिरे रहते थे, शराब पीकर, गंदगी करके, उल्टियां करी हुई हैं लोगों ने, बाथरूम किया हुआ, गंदगी बदबू, उसमें से चलकर एक सन्यासी, भगवान के शुद्ध भक्त, किस लिए? क्या छोड़ नहीं सकते थे? छोड़ देते कि ये होने वाला नहीं है कुछ। करुणा थी, इसीलिए एक प्रचारक के हृदय में जब तक करुणा नहीं होगी वो प्रचार नहीं कर सकता। हृदय परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इसीलिए हर भक्त के हृदय में एक करुणा को जागृत करना बहुत आवश्यक है। हम सबके हृदय में करुणा हो, अपने साथ में रहने वालों के प्रति मैत्रता का भाव और जो बाहर है उनके प्रति करुणा का भाव कि कैसे हम उनको लेकर आए। और सबसे पहले तो इस जीव के प्रति करुणा होनी चाहिए जो यहां है, अर्थात अपने प्रति हमें भक्ति में गंभीर होना चाहिए। और फिर जो अन्य हैं, जो भगवान के निकट नहीं है, प्रचार कैसे करके कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम भगवान के संदेश दे सकें, ये सच्ची करुणा है। तो प्रभुपाद ने जो दिखलाई, तो ऐसी करुणा हृदय में होनी चाहिए। और अगला गुण भगवान कपिल देते हैं, आत्मवान। आत्मवान अर्थात आत्मा में स्थित रहे। आत्मवान जैसे धनवान, ज्ञानवान, आत्मवान, आत्मवान यानी जिसको आत्मा जिसके साथ है या आत्मा में जो स्थित है उसे आत्मवान कहते हैं। अर्थात वो अपनी स्थिति में रहे। भक्त को ये जान लेना चाहिए कि ये सब जो है ये मेरे लिए नहीं है, वो आत्मा के स्तर पर रहे। तो आत्मा के स्तर पर रहने का अर्थ क्या है? आत्मा के स्तर पर रहने का अर्थ है भगवान की भक्ति में लगे रहना, भगवान की सेवा को करते रहना, ये आत्मवान स्थिति है। आत्मवान स्थिति ये नहीं है कि बस हम आत्मा हो गए, अब हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम हवा में उड़ रहे हैं, ये शरीर कुछ नहीं। नहीं, आत्मवान अर्थात भगवान की भक्ति में स्थिर रहना, अपनी सेवा को कभी छोड़ना नहीं, हमेशा और सेवा की कामना करते रहना, ये भक्त का लक्षण है। कभी वो सेवा को छोड़ता नहीं, थोड़ी सी भी छोटी सेवा भगवान की मिले भाग कर करता, लालायित रहता है भगवान की सेवा के लिए, ये भक्त का लक्षण है। और अगर कभी उसके उससे सेवा चली जाए तो बहुत दुखी होता है। हम लोगों को कितना लोगों को दुख होता है हमारी सेवा जाने का, हम लोग तो प्रसन्न होते बहुत अच्छे लेके जा। हम जब पहली बार मंदिर में गए थे, एक मंदिर में, वहां गौर पूर्णिमा का उत्सव चल रहा था, बड़ा छोटा मंदिर था, व्यवस्था नहीं थी, तो कुछ भक्त मिलकर स्टेज बना रहे थे शाम के प्रोग्राम के लिए। तो हम दिन में गए तो वो गड्ढा खोद रहे थे पोल लगाने के लिए, एक टेबल वेबल लाए थे, स्टेज बना रहे थे, कुछ मेहनत कर रहे थे। तो हमने थोड़ा देर देखा दूर से, फिर हमने इच्छा हुई कि थोड़ी सेवा करनी चाहिए, तो हमने जाकर उसको पूछा, उस भक्त को। मुझे लगा, पता नहीं, हमें लग रहा था ये अलाउ करेंगे कि नहीं, क्योंकि हम बाहर के व्यक्ति हैं, मंदिर को होगा। तो हमने जाकर उनसे ऐसे प्रार्थना की कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ये थोड़े मैं सेवा करूँ। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कीजिए। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, कितना अच्छा भक्त है। तो बाद में हमें बता रहे थे, बोलते उस दिन आप आए थे ना पूछने के लिए, जैसे ही आपने पूछा इतना अच्छा लगा, ले लो ले ले जाओ, बहुत अच्छा, अकेले कर रहा था, कोई था नहीं। तो ऐसा भाव, ऑफकोर्स अच्छा भाव था, उन्होंने सेवा दी हमें, नहीं तो शायद आज आप भगवान की सेवा नहीं कर पाते। लेकिन हमारा भाव ये होना चाहिए कि अगर हमारी सेवा चली जाए, मेरी सेवा भगवान की जो है अगर वो चली जाए, तो दुख होना चाहिए, उस समय रोना चाहिए व्यक्ति को, हाय हाय उस समय करना चाहिए, जैसे लोग रोते हैं जब कहीं कोई मर जाता है। सेवा चली जाए हमारे पास से, तब दुख होना चाहिए, तब कष्ट होना चाहिए। लेकिन अगर भगवान की सेवा का अवसर मिलता है, ये एक सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है भगवान की सेवा करना। किसकी हम सेवा कर रहे हैं? कोई छोटे मोटे व्यक्ति की नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। तो इसलिए इसके लिए भक्त को लालायित रहना चाहिए हमेशा, ये आत्मवान स्थिति है। हमेशा लालायित रहे कि कब मुझे सेवा मिले। हमारा भाव बदलना है, हमें सेवा को देखते ही हमें दूर नहीं चले जाना है, भाव बदलना है, लालायित रहना कि कब मुझे सेवा मिले, क्या लाभ है मेरे जीवन का अगर मैं आज के पूरे दिन में एक घंटा सेवा भी नहीं कर पाया भगवान की, व्यर्थ है जीवन। ऐसा भाव हमें उत्पन्न करना चाहिए। तो ये आत्मवान स्थिति, आत्मवान मतलब सदैव भगवान की सेवा में लगे रहना, इसको आत्मवान स्थिति कहते हैं। और फिर अगला गुण बताते हैं कि भक्त को अहम और मम, मैं और मेरा, इसके भाव से अलग रहना चाहिए। ये बड़ा कठिन है, थोड़ा सा समय और लेंगे आप लोगों का, क्षमा कीजिएगा। अहम और मम, आज भी अध्याय समाप्त नहीं होगा, कल इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन ये अहम मम को समझा देता है। तो अहम और मम ये हमारे लिए बड़ा कष्टदायक है। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर भजन लिखते हैं, शरणागति, उन्होंने भजन लिखे, शरणागति के 6 लक्षणों को अलग अलग भजन से समझाया, और जिसमें आत्मनिवेदन भजन को, आत्मनिवेदन तत्व को समझाने के लिए बहुत सुंदर भजन लिखा है उन्होंने, और वो यही बात को समझाता है, अहम मम। तो वो कहते हैं, उनके भजन की शुरुआत वो करते हैं, वस्तुत सकल तव जीवे के होना, अहम मम भ्रमि भ्रमि भोग शोक भय। तो वो कहते हैं वस्तुत सकल तव जीवे के होना, सही दृष्टि में, वस्तुत मतलब सही में, सत्यता में, सकल तव सब आपका है, श्री कृष्ण भगवान को संबोधित कर रहे हैं, वस्तुत सकल तव जीवे के होना है, जीव का कुछ नहीं है, क्या है हमारा इस जगत में, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ, ये भौतिक प्रकृति भगवान की दी हुई, कुछ नहीं है हमारा। वस्तुत सकल तव जीवे के होना है, कितनी सुंदर बात लोग कहते हैं, अहम मम भ्रमि भ्रोमि शोके भोग भय। क्योंकि जीव जो ये समझता नहीं है कि आपका सब कुछ है, वस्तुत सकली तब अहम मम, मैं और मेरा, भ्रमी, इस भ्रम में रहता है, इसीलिए भोगे शोक भय, शोक और भय में पड़ा रहता। हमारे जीवन में शोक और भय क्यों है? अहम मम, बस मैं और मेरा। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अगर कोई समझ जाए कि वस्तुत सकल तव जीवे के होना है, जीव का कुछ नहीं है, तो कितनी सरलता से वो भोग शोक और भय से मुक्त हो सकता है। किस चीज का शोक करेगा? व्यक्ति शोक करता है कि मेरा कुछ चला गया, मुझे कुछ मिला नहीं, अरे है ही नहीं तुम्हारा, तो क्या शोक करेगा? जैसे मान लीजिए कि हम सुनते हैं कि किसी के घर में चोरी हो गई, उसका 1 किलो सोना चला गया, तो हम लोग क्या रोते हैं? हाय हाय आंसू बहाते हैं, क्या हुआ, कितना नुकसान? नहीं, हम लोग सोचते हैं ठीक है, उल्टा हम लोग कभी कभी गलत सोचते हैं, अच्छा हुआ, क्यों रखा था सोना घर में, किसने कहा था घर में रखने के लिए, हमारा विचार यही रहता है। लेकिन अगर हमारा चला जाए, मान लीजिए हमारे घर से 1 किलो सोना चोरी हो जाए, तब हम ये सोचेंगे किसने कहा था रखने के लिए, बहुत अच्छा हुआ? नहीं, तब तो हमारे हाय हाय क्या किया भगवान ने, इतने रविवार इस्कॉन मंदिर गया, क्या लाभ हुआ, सोना चोरी हो गया, भगवान ने यह भी रक्षा नहीं की, सोने की तो रक्षा की नहीं, मेरी रक्षा क्या करेंगे? तो ये भाव आता, क्यों हम तो भय क्यों है, शोक क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि अपनी समझता है चीजों को। और भय क्यों होता है? शोक भोग, भोगे शोक भय, भय क्योंकि मेरा, मैं और मेरा, मैं ही सब कुछ हूं, तो मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, भय, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बड़ा सरल है, सब कुछ आपका है, वस्तुत सकल तव जीवे के होना, अहम मम भ्रमि भ्रमि भोगे शोक भय। और एक बहुत सुंदर बात वो कहते हैं आगे, अहम मम अभिमान ए मात्र धाम, बद्ध जीव निज बलि जने मने मन। वो कह रहे हैं कि इतने जन्म में जी लिया, और इन जन्मों में मैंने कौन सा धन कमाया? अहम मम अभिमान ए मात्र धन, एक ही धन कमाया है प्रभु सारे जन्मों में, और क्या है? अहम मम अभिमान, मैंने यही कमाया है कि बस मुझे अभिमान हुआ है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, बस मैं श्रेष्ठ हूं, मैं भगवान हूं, और जो कुछ भी है वो मेरा है। अहम मम अभिमान ए मात्र धन, बद्ध जीव निज बलि करि मने मन। तो जो बद्धता है जीव की इसीलिए है क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या धन कमाते हैं। देखिए भगवान के नाम के धन को छोड़कर सबसे बड़ा धन गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, उसको छोड़कर कौन सा धन कमाया? अहम मम अभिमन यही मात्र धन, यही मात्र धन कमाया है बस। मैं और मेरा जीवन भर मृत्यु तक उसमें पड़े रहते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मैंने जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है उसका क्या होगा। अहम मम, कभी ये नहीं सोचते कि जो होगा भगवान की इच्छा, मुझे क्यों चिंता करनी। अरे मैं चिंता करूं भगवान के भजन की और फिर भगवान चिंता करेंगे मेरे घर की, मैं क्यों चिंता करूं। लेकिन वो विश्वास नहीं है। तो अहम मम अभिमान एई मात्र धन। और फिर आगे वो कहते हैं,
से अभिमने आमी संसारे पड़िया, हाबू डुबू खाई भव सिंधु संतरिया।
बहुत सुंदर भजन है, अभी समय नहीं है चर्चा के लिए, संक्षेप में आपको बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि यही अभिमान, ये जो मैंने जीवन कई जीवनों में धन अर्जन किया है, कौन सा? अहम मम अभिमान से ही मात्र धन। और यही जो अभिमान है इसी के कारण इस भवसागर में पड़ा हुआ हूं प्रभु। से ही अभिमान आमी संसारे पड़िया, नहीं तो कब का आपके पास आ चुका होता। अगर ये अभिमान नहीं होता मैं और मेरा, कब का आपके पास आ चुका होता। लेकिन से ही अभिमाने, इसी अभिमान के कारण आमी संसारे पड़िया, हाबू डुबू खाई भव सिंधु संतरिया। हाबू डुबू मतलब ऊपर नीचे जा रहा हूं। जब आप समुद्र में गिर जाते हो, डूबने लगते हो, तो कभी लहरें ऊपर फेंकती हैं, कभी नीचे फेंकती हैं। तो भवसागर ऐसा ही है। ये भवसागर क्या करता है, ये कभी आपको ऊपर फेंकता है, ऊपर मतलब आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाते हो, बहुत प्रसन्न। क्योंकि जब व्यक्ति ऊपर आता है तो अच्छा लगता है, नीचे जाता है तो खराब लगता। तो इसी तरह कभी जीवन में खुशी कभी गम है ना, तो हम बड़े आनंद में हो जाते हैं, हाबू डुबू फिर नीचे फेंक देती है हमें। तो इसका कोई लाभ नहीं है इस प्रसन्नता का। तो बोल रहे हैं कि ये जगत में हम पड़े रहते हैं। फिर वो प्रार्थना करते हैं,
एई मात्र बल प्रभु दिबे अमरे, अहम तम मता दूरे परी रखी बरे।
कहते एक ही बल मुझे दीजिए प्रभु, एई बल, एई मात्र बल प्रभु दिबे अमारे, हे प्रभु मुझे केवल एक एई मात्र बल दीजिए। क्या बल? अहमता ममता, ये जो अहमता ममता मैं और मेरा है इसको दूर रख सकूं, बस इससे दूर रह सकूं। कुंती महारानी भी यही प्रार्थना करती हैं भगवान से कि मेरे इस बंधन को काटिए, मैं अपने आप को यदुवंशियों से संबंधित, कुरुवंशियों से संबंधित मान रही हूं, इसको काटिए आप इस बंधन को। अहमता ममता दूर राखी पारी बारे, इतनी शक्ति दीजिए कि इससे दूर रह सकूं। अंत में वो कहते हैं,
आत्मनिवेदन भव हृदय दृढ़ रहे।
हाँ, वो कहते हैं आत्म हृदयन, ये जो मैं अब आपको आ रहा हूं, ये जो बोल रहा हूं, ये दृढ़ता से बना रहे। ऐसा नहीं हो कि मंदिर के बाहर जाने के बाद सब भूल जाऊं मैं।
आत्मनिवेदन प्रभु रहे हृदय, हृदय दृढ़ रहे, बहुत दृढ़ता से बना रहे, ये आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हाथी स्नान सम से ही, हाथी के स्नान की तरह मेरा ये समर्पण ना हो।
बहुत सुंदर बात भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, इस भजन को रविवार को गाएंगे। वो कहते हैं कि हाथी के स्नान की तरह मेरा समर्पण ना हो। कैसा हाथी का स्नान? आज आया हूं प्रभु, बहुत दुख है, बस आपको समर्पण, जो आप कहें वो करें, और फिर बाहर जाके फिर वही खाना पीना। तो इसको कहते मम, मैं और मेरा से परे रहना। क्षमा कीजिए समय काफी हुआ है, कल इस अध्याय पर और चर्चा आगे जारी रहे।